के 42वें एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत में ही परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि मुझे वह व्यक्ति अति प्रिय है जो मन, वाणी और कर्म से किसी भी आत्मा को दुख नहीं देता। तो हम अपनी वाणी मधुर कैसे बनाए, अपने मन की स्थिति मजबूत कैसे बनाए, जिससे हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए कोई भी दुर्भावना अथवा गलत भावना न आए। हमारे बोल ऐसे कैसे बने जो मुख श्रीमुख बन जाए। आइए सुनते हैं सूर्य भाई से।
श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय हम सभी को दैवी संपदा के उन अनमोल लक्षणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाता है, जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपना लें तो सचमुच हम मनुष्य होते भी देवता बन जाएं। आज तो लोग कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य भी नहीं रहा, मानव में मानवता भी नहीं रही, परंतु मानवता के स्थान पर देवत्व आ सकता है, मानव देव स्वरूप बन सकता है, यदि 16वें अध्याय में बताए गए इन सद्गुणों पर सभी ध्यान दें। हम बहुत सरल भाषा में आपके समक्ष दूसरे श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें पहले ही शब्द हैं कि जो व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं देता, जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता, ऐसा व्यक्ति दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति है। हम पहले इस बात पर विचार कर लें, मन, वाणी, कर्म से, शरीर से किसी को भी दुख न देना। कितने अच्छे शब्द हैं, सभी को सुख देना, किसी को भी दुख न मिले। इस संसार में कोई भी दुख नहीं चाहता, पर दुख हर व्यक्ति देता रहता है। सभी चाहते हैं कि हमें दूसरों से सुख मिले, परंतु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम किसी को दुख न दें, हम सभी को सुख पहुंचाएं। हम अपने चित्त में ये धारणा मजबूत करें कि हमें अपने मन से, बोल से और शरीर से दूसरों को किसी भी तरह से दुख नहीं देना है, क्योंकि संसार में मनुष्य पहले ही बहुत दुखी हैं, अपने पाप कर्मों के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, रोगों के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण, अश्लीलता के कारण, मनोविकारों के कारण, व्यर्थ चिंतन, निगेटिव चिंतन के कारण, और अनेक और भी कारण हैं जिनसे संसार में हर मनुष्य का दुख दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। परंतु हमें सोचना है कि जब दुख बढ़ रहा है, हम इस दुख की तेज चलती हुई आंधी को क्या कुछ विराम दे सकते हैं। जो हमारे संपर्क में लोग रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम कार्यरत हैं, कम से कम हम वहां ऐसा माहौल पैदा करें कि कोई किसी को दुख न दे, सभी एक दूसरे के लिए सुखदाई बन जाएं, तो वास्तव में यही एक दूसरे के प्रति सच्ची मित्रता है। मन से, वाणी से और शरीर से कष्ट देने को तो सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दूसरे को मार देना, किसी की हत्या कर देना, लात मार देना, किसी भी तरह से शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाना। परंतु बहुत ध्यान देने की बात है, बोल के द्वारा दूसरों को दुख न दिया जाए। हमारे बोल ऐसे हों जो सुखदाई हों, हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरों के दुख समाप्त करते चलें, दूसरे के चित्त को शीतल कर दें, दूसरे के मन में छाई हुई निराशा को आशाओं में बदल दें, जिसने अपनी सभी उमंगे खो दी हैं, जिसके जीवन में हताशा और निराशा का अंधकार छा गया है, उसके जीवन में प्रोत्साहन आ जाए, उमंग आ जाए। हमारे बोल ऐसे भी हो सकते हैं जो मनुष्य में जागृति आ जाए, जो उसके अंदर सुसुप्त शक्तियां जागृत हो जाएं, उसका दबा हुआ विवेक फिर से निखर उठे और वो अपने जीवन के महत्व को समझ ले, तो सीख लें हम कैसे बोल बोले। कई मनुष्य संसार में हैं, बहुत बड़े हो गए लेकिन जिन्होंने अब तक बोलना नहीं सीखा। एक बच्चा भी जल्दी बोलना सीख जाता है, परंतु कुछ बड़े लोग अब तक बोलना नहीं सीख पाए। यदि वो बोलते हैं तो उनके मुख से पत्थर निकलते हैं, वो जिसको टकराते हैं उसको तोड़ फोड़ के चकनाचूर कर देते हैं, उसकी खुशी और शांति को नष्ट कर देते हैं। जब वो बोलते हैं तो उनके बोल से श्रापित करने वाले शब्द उच्चारित होते हैं, जब वो बोलते हैं तो दूसरे गमगीन हो जाते हैं, कोई भी उनके बोल सुनना नहीं चाहता। सोचो यदि दूसरा व्यक्ति हमसे भी ऐसे ही बोल बोलता हो तो हमें कैसी अनुभूति होगी? क्या हम जीवन में सुखी रह पाएंगे? क्या दूसरे के कटु बोल हमारे दिल के अंदर घाव नहीं कर देंगे? आपने ये कहावत अवश्य सुनी होगी कि तीर और तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन किसी के द्वारा बोले गए कटु शब्द जो दिल को घाव से पीड़ित कर देते हैं उसका भरना बहुत कठिन होता है। तो आओ हम अपने मुख को ऐसा मीठा बनाएं ताकि हमारे मुख से अमृत झड़े, हमारे मुख से फूलों की बरसात हो, हमारे मुख से निकले हुए शब्द दूसरों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएं। हमारा मुख एक ऐसा मुख बन जाए जिससे लोग सदा सुनना चाहें, कोई ये ना कहे कि ये तो चुप ही रहे तो अच्छा है। और बोलो, हमारे बोल महत्वशाली हो जाएं, हमारा एक एक बोल मनुष्य के जीवन को दुखों के इस झंझावत से निकालने वाला बन जाए। बोल सकते हैं ऐसे बोल? सभी माताएं अपने अपने घरों में ध्यान दें, बच्चों के साथ रहते हुए। आजकल छोटे बच्चे जो थोड़े चंचल होते हैं, माँ बाप को बहुत तंग करते हैं, माँ बाप गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी तो बच्चे उसे हंसी खुशी में सरल रूप से लेके समाप्त कर देते हैं, पर कभी कभी बच्चे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उनकी सहनशीलता जवाब दे जाती है और वो माँ या बाप का हर शब्द सीरियसली लेते हैं, उनके जीवन में डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा आज हजारों के मन में डिप्रेशन हो रहा है माँ बाप के ऐसे तीखे बोल सुनकर, बहुत बच्चों की खुशी नष्ट हो रही है। तो सभी ध्यान दें, अगर आपके घर में एक बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो उसे बार बार आप ऐसे वचन न बोलें, तुम तो बुद्धू हो, बिल्कुल फेल हो जाओगे, कोई काम के नहीं, तुम तो हमारे घर में यूं ही पैदा हो गए, बोझ बनकर आए हो, तुम मेहनत नहीं करते, किसी की नहीं सुनते हो। अच्छे बोल बोले, उमंग दिलाने वाले बोल बोले, बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, जरा सी मेहनत करो, टीवी तो बाद में देख लेना, तुम्हें फर्स्ट क्लास लानी है। ऐसे उमंग भरे बोल यदि माँ बाप की ओर से बच्चों को सुनाए जाएंगे तो बच्चे सचमुच बहुत होशियार हो जाएंगे, आपके आज्ञाकारी हो जाएंगे, उनके दिल में आपके लिए सम्मान हो जाएगा। अपने साथियों के लिए भी आप सब ध्यान दें कि हमें दूसरे के कार्यों को एप्रिशिएट करना चाहिए। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यदि आप मैनेजर हैं, यदि आप लीडर हैं, तो आप बहुत सफल हो सकते हैं यदि आप दूसरों को एप्रिशिएट करने की कला में पारंगत हो जाएं। वो झूठी प्रशंसा ना हो, वो एक ऐसी प्रशंसा हो जो दूसरों में प्रोत्साहन की भावनाएं जागृत करे, जो दूसरों में डेडिकेशन की भावना जागृत करे, जो दूसरे मर मिटने के लिए तैयार हो जाएं। तो आओ हम सभी अपने बोल को मूल्यवान बनाएं। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा ना बोलें। जहां हमें 50 शब्द बोलने हों, यदि 10 शब्दों से काम चल सकता है तो हम 10 शब्दों से ही काम चलाया करें, क्योंकि बोल के द्वारा भी हमारी बहुत सी शक्तियां नष्ट होती हैं। जो व्यक्ति व्यर्थ बोलता रहता है, जो ज्यादा बोलता है, जो अंतर्मुखी नहीं होता, उसकी बातों का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, उसकी बातों को लोग मूल्य नहीं देते, समझते हैं ये तो बोलता ही रहता है, उसके बोल में प्रभाव भी नहीं रहता। जो कम बोलते हैं उन्हें बोल की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जो कम बोलते हैं उनके बोल बहुत मूल्यवान हो जाते हैं, उनके बोल दूसरों के लिए गाइडलाइन बन सकते हैं। इसलिए कम भी बोलना है, धीरे भी बोलना है, बहुत प्यार से भी बोलना है, स्वमान युक्त बोलना है, दूसरों को शांत करने वाले बोल बोलने हैं, दूसरों का क्रोध बढ़ाने वाले बोल कभी भी उच्चारण नहीं करने हैं। ऐसी बोल बोलने की कला यदि हम सीख लें तो यही हमारा भगवान के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति सच्चा प्यार होगा। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आप सोच लीजिए, इसी श्लोक का कोई पाठ कर ले कि मन वचन शरीर से किसी को भी दुख न देना चाहिए और सारा दिन दुख देता रहे, तो क्या इस पाठ करने से कुछ उपलब्धि होगी? कदापि नहीं। इसलिए हमें गीता का स्वरूप बनना है। जो श्रीमद् भगवत गीता या हमारे धर्म हमें कहते हैं उसे हमें करना है। यही धर्म के लिए या गीता के लिए या भगवान के लिए हमारा सच्चा प्रेम माना जाएगा। मन से भी किसी को दुख नहीं देना है, और सुख संबात है। मन से हम निरंतर सोचते हैं, हमारे मन की तरंगे निरंतर बाहर फैलती हैं, वो दूसरों तक पहुंचती हैं, उसका प्रभाव हमारे चारों ओर के वातावरण भी पड़ता है, और जिस व्यक्ति के बारे में हम सोचते हैं उस पर भी पड़ता है। वातावरण चार्ज होता है, निरंतर चार्ज होता रहता है हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा। हम मन से भी दूसरे का बुरा न सोचें। यदि हमारे मन में दूसरों के लिए बुरी भावनाएं हैं, यदि हमारे मन में दूसरों के लिए बदले लेने की इच्छा है, यदि हमारे मन में दूसरों को कष्ट पहुंचाने की, गिराने की इच्छा है, यदि हम दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, सोचते हैं इनका बुरा हो जाए, इनका सब कुछ नष्ट हो जाए, इनके बिजनेस में घाटा पड़ जाए, ये बीमार हो जाएं, ये कष्ट पाते रहें, ऐसी दुर्भावनाओं से भी दूसरों को दुख मिलता है। कई लोग सोचते होंगे कि भला किसी के ऐसा सोचने से क्या होता होगा। होता अवश्य है, लेकिन यदि हम शक्तिशाली हैं, यदि हमारे विचार बहुत स्ट्रांग हैं, तो हमारे चारों ओर एक ऐसा प्रभाव मंडल बन जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए ऐसा बुरा सोच रहा हो तो वो हमारे इस प्रभाव मंडल से टकराकर उसके विचार, उसके वाइब्रेशंस वापस हो जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति तो इस संसार में शक्तिशाली नहीं होता है। इसलिए यदि हम बुरा सोचते रहेंगे दूसरों के लिए, तो इसका प्रभाव दूसरों पर कुछ ना कुछ अवश्य होगा। ये दूसरों को दुख देना होगा, ये दूसरों का अकल्याण करना होगा, और हमारे लिए ये पाप होगा। पाप ही नहीं, सभी एक बात से अवगत रहें, सभी को जानकारी रहे, हम जब दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, उन विचारों का प्रभाव सबसे पहले हम पर पड़ता है। बुरा सोचते ही हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी विचारों की महानता, हमारी पर्सनालिटी नेगेटिव हो जाती है, हमारी शांति चली जाती है, हमारी खुशी भी खो जाती है। इसलिए पहले हमारे कर्म का जो तत्काल प्रभाव है वो हमें अनुभव में आता है, हमें उसे भोगना पड़ता है। हर कर्म का एक तत्काल प्रभाव भी होता है, इमीडिएट इफेक्ट। कुछ फल थोड़े बाद में मिलते हैं, 2 साल बाद 4 साल बाद मिलेंगे या अगले जन्म में मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका इमीडिएट फ्रूट हमें प्राप्त होता है। और उसमें भी सोचना, बोलना और कुछ शरीर के द्वारा भी कर्म करना, इनका तुरंत हमें फल मिलता है। इसलिए हम जरा सावधानी पूर्वक अपने मन, वचन और कर्म को करें, ताकि न चाहते हुए बिना मतलब ही हमारे पाप कर्मों का खाता बढ़ता न जाए। क्योंकि कर्म ऐसे हैं जिसके प्रभाव से, जिसके फल से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। पाप पहले ही बहुत है सबके साथ, अब इस पाप के खाते को और न बढ़ाएं। हम सभी संकल्प करें कि हम बहुत पुण्य करें, दूसरों को बोल के द्वारा सुख पहुंचाएं। बोल के द्वारा सुख पहुंचाने में तो हमारा कुछ खर्च भी नहीं होता। और सभी को ये भी जानना चाहिए कि दूसरों को सुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वो व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है जो अच्छे बोल बोलता है, जो कटु बोल बोलता है वो सभी का प्रेम खो देता है। हम अपनी वाणी को संयमित करें, अपने पुण्य के खाते को बढ़ाएं और संकल्प कर लें, जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही सभी सुख चाहते हैं, दूसरों को सुख बांटते चलो, तुम्हारा जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। जो दूसरों को जो कुछ देता है उसको वो कई गुना होकर मिल जाता है। आप दूसरों को खुशी बांटेंगे, खुशी कई गुनी होकर आपके पास वापिस आ जाएगी। आप दूसरों को सुख देंगे, सुख कई गुना होकर आपके पास आ जाएगा। आप दूसरों को शांति प्रदान करेंगे, आपका जीवन सदा शांति में बना रहेगा। आप दूसरों को उमंग उत्साह दिलाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, समय पर आपको मनुष्यों की मदद मिलेगी, प्रकृति की मदद मिलेगी और स्वयं भगवान भी आपको मदद करने के लिए सदा ही तत्पर रहेगा। तो बहुत अच्छा, ये महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के दूसरे श्लोक में है, शुरू में ही दूसरी बात कही है, कर्तापन का अभाव। हम सभी कर्म कर रहे हैं, कर्म तो हम ही कर रहे हैं। हमारी बुद्धि ने कर्म करने के लिए निर्णय लिया, हमारे मन ने कर्म करने के लिए विचार किए, हमने शरीर के द्वारा कर्म किए। कर्म तो आत्मा ही कर रही है, कर्ता तो आत्मा ही है। आत्मा ही शरीर में बैठकर शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है। परंतु कर्म करने के बाद अब दो स्वरूप हैं। एक है कर्म करने का अभिमान आ जाए मनुष्य में, मैंने ये बहुत अच्छा काम किया, मेरे सिवाय ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, ये काम केवल मैं ही करूंगा, देखो मेरा कितना नाम है, मैंने धर्मशालाएं बनवाई हैं, मेरे फलाने फलाने हॉस्पिटल्स हैं, मैंने इतने कॉलेज खुलवाए हैं, मैंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, मैंने बहुत समाज सेवा की है, ये अभिमान आ जाता है। दूसरा होता है कि कर्म करते हुए मनुष्य कर्म कॉन्शियस रहता है, सूक्ष्म चीज है, ये धारणा केवल योगियों के लिए है, जो साधना के पथ पर अग्रसर हैं, उनके लिए है कि मनुष्य कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव में पूरी तरह लिप्त हो जाता है, दबा दबा सा रहता है। ये कर्म का प्रभाव उसके मन को विचलित करता है, उसके मन को लक्ष्य से विमुख कर देता है, न फिर वो कर्म में एकाग्र हो पाता और न परमात्मा में। इसलिए इन दोनों चीजों से बचना है तो हम निमित्त भाव अपनाएं, और निमित्त भाव अपनाने का बहुत सुंदर तरीका है कि मैं आत्मा यहां बैठकर इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूं, मैं भी करण करावनहार हूं। जैसे परमात्मा करण करावनहार है, उसके लिए ये महिमा गाई जाती है, यही महिमा आत्मा की भी है। आत्मा कर भी रही है और शरीर के द्वारा करा भी रही है। तो हम ऐसी भावना अपने अंदर जागृत करें, निमित्त भाव अपनाएं कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूं। तो आप अनुभव करेंगे, आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, कर्म आपको बांधेंगे नहीं, कर्म आपको उलझाएंगे नहीं, कर्म में जो मानसिक और शारीरिक थकान होती है उससे आप बचे रहेंगे। आपको लगेगा दो चार बार ये विचार करने से ही आप जैसे चार्ज हो गए हैं, जैसे कुछ खाने पीने से हमारे शरीर में एनर्जी आ जाती है, वैसे ही आत्मिक स्मृति से आत्मा चार्ज हो जाती है। तो सभी इस चीज पर बहुत ध्यान दें। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात अनेक बार आई है कि कर्मों में कर्तापन न हो, इसलिए लोगों ने, फिलोसोफर्स ने ये सिद्धांत भी दिया, कर्म आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं कर रही है। फिर भी मनुष्य में कर्तापन का भान क्यों आ गया? दोनों विपरीत चीज हो गई। वास्तव में वो सिद्धांत सत्य नहीं था कि आत्मा करता है, आत्मा ही सब कुछ कर रही है। लेप छेप भी आत्मा को मिल रहा है, कर्मों का फल भी आत्मा को मिल रहा है। हम सब रोज देख रहे हैं, क्या हम लोगों को कहते हुए नहीं सुनते? मेरी आत्मा को दुखी न करो, मेरी आत्मा को शांति दो। क्या हम लोग ये भक्ति की प्रार्थनाएं नहीं सुनते? भक्त कहते हैं, भगवान मेरी आत्मा को शांति दो। शांति, दुख, सुख, क्या ये आत्मा के ही अनुभव नहीं है? मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा ही तो इन चीजों को अनुभव कर रही है। तो हम कर रहे हैं, हम कर्ता हैं। कर्ता होते हुए हम निमित्त भाव अपना लें कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो हम में बहुत अच्छी अलौकिक अनुभूति रहेगी। हमारी शक्तियां नष्ट नहीं होंगी, हमारे अंदर अभिमान नहीं बढ़ेगा और हम समाज की और संसार की अत्यधिक सेवा कर सकेंगे। देखा
कि हम अपनी वाणी और कर्म को ऐसा श्रेष्ठ बनाएं कि हमारे मुख से सदा सभी के लिए श्रेष्ठ और शुभ भावना के बोल ही निकलें। हमारे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हों जिनका गायन और पूजन सभी करें। हमारे मन में किसी भी आत्मा के प्रति दुर्भावना, बदले की भावना, द्वेष व ईर्ष्या न हो। यदि ऐसे देवी गुण आप अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो मैं परमात्मा की ओर से आप सभी को खुले दिल से निमंत्रण देती हूँ कि आप भी अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्ते।
आपके ही रहना, धरती भी ना नीरव में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने
पधारिए, सादर पधारिए।